سب سے سارے ٹائم پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، انڈیا کی، پاکستان کی، امریکہ کی، جاپان کی. کم سے کم اپنے گھر کے لیے 25 منٹ نکال لیں. اگر آپ 20 سے 25 منٹ نکال سکیں گے اپنے گھر کے لیے تو میں یا میرے جیسا کوئی انشورنس ایڈوائزر آپ کی ہیلپ کر سکے گا، آپ کے سامنے ویریس آپشنز رکھ سکے گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو اس میں بھی کافی کچھ کام ہو سکتا ہے. کیونکہ جب بھی ہمیں کچھ کام کرنا ہے ہمیں اپنے کمفرٹ زون کے بھیتر رہ کے کرنا ہے، اور ہم لوگ اس طرح کے پلان آپ کے لیے بنا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ جس میں آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کے کم پیسوں میں بھی کافی کچھ کام ہو سکے گا. اور وقت کتنا چاہیے؟ صرف 20 سے 25 منٹ کا، اور جس میں کوئی کاسٹ یا آبلیگیشن نہیں کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے یا آپ کو کوئی فیس لگے گی ہی لگے گی. تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور آپ کے پاس اتنا بجٹ بھی ہے کہ جس میں ایک اچھی خاصی شروعات آپ کر سکیں گے. ماجد بھائی، اس کے لیے مجھے فون کریں 416-894-5872 416-894-5872. ڈسکس کریں، سنیں، سوچیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کچھ کرنا ہے یا کچھ نہیں کرنا.
اب یہ سینریو میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ سے لینا چاہا مگر وہ ان کا پلان ہے کہ لیٹر ان یور لائف دے وانٹ ٹو سیٹل آؤٹ سائڈ کینیڈا.
یہ ماجد بھائی بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا. بہت لوگ یہاں سے موو کر کے چلے جاتے ہیں. سنو برڈس تو ہوتے ہی ہیں لوگ، لیکن بہت سارے لوگ پرماننٹلی بھی موو کر جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اگر آپ کے من میں ایسا ہے بھی، ابھی آپ کام کر رہے ہیں، ابھی جب ہم انشورنس آپ کے لیے بنائیں گے تو اس میں سوال ایک ہی آتا ہے کہ پچھلے 12 مہینوں میں آپ کہاں کہاں رہے، کتنے کتنے ٹائم رہے، اور اگلے 12 مہینوں میں آپ کا کیا پلان ہے. تو اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے کہ اگلے 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 20 سال بعد ہو سکتا ہے آپ موو کریں نہیں کریں، تو اس سے آج کے آپ کے اس کے اس ارادے سے آپ کے پلان پہ کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں آ رہا. کیونکہ آج آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ پچھلے 12 مہینے کا اور اگلے 12 مہینے کا، اور ان میں بھی وہی چیز پوچھی جا رہی جو کہ آپ نے ایکچولی کیا یا آپ نے ٹکٹ لے لیا اگلے 12 مہینے میں کہاں کہاں جانا ہے. تو اگر آپ کو 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 20 سال بعد موو آؤٹ کرنا ہے، کینیڈا سے نکل کے آپ یو ایس اے موو کر جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں یا پاکستان، انڈیا یا یورپ میں کہیں سیٹل ہو جاتے ہیں، کوئی بھی دقت نہیں اور آپ کا پلان برابر چلتا بھی رہے گا، کسی بھی طرح کی اس میں کوئی اڑچن یا دقت نہیں آئے گی. ماجد بھائی،
سامعین ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب پردیپ جی سے. پردیپ جی کا تعلق سن لائف فائنینشل سے ہے. 416-894-5872 جناب پردیپ جی کا فون نمبر ہے. پردیپ جی، واٹ ہیپنس اف سمبڈی ہیو ہیلتھ ایشوز؟
ماجد بھائی، ہیلتھ ایشوز تو ہوتے ہی ہیں، ایج کے ساتھ ساتھ آتے ہی آتے ہیں سب کے ساتھ. لیکن کمپنیاں بھی بزنس کرنے بیٹھی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی جو ہیلتھ میں اگر کچھ آ گیا تو آپ کی پروبیبلٹی آف مورٹیلٹی یا ڈیتھ کتنی بڑھ جاتی ہے، اس حساب سے کمپنیاں اندازہ لگاتی ہیں. اور بہت بار ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہیلتھ تو بہت خراب ہو گئی، لیکن کمپنی کی نظر میں ایسی نہیں ہوتا. جیسے سن لائف ہے، بہت ساری کمپنیاں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں، آپ سے ایکسٹرا پیسے چارج کرتی ہیں اور کئی بار ڈکلائن کر دیتی ہیں. لیکن سن لائف یہ مان کے چلتی ہے اگر آپ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائی کھاتے ہیں اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر آپ کی کنٹرول رینج میں رہتا ہے تو آپ ایک نارمل ہیلدی پرسن ہیں، وہ ایک پیسہ بھی آپ سے ایکسٹرا نہیں لیتے. اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں انہوں نے اس طرح سے کنسیشنز کیے ہوئے ہیں. تو آپ ایک بار پوچھ کے دیکھیں 416-894-5872. اگر آپ کو ہیلتھ کے پرابلم ہیں بھی تو آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کتنا سیریس ہے آپ کو معاملہ لائف انشورنس کے حوالے سے. کیونکہ لائف انشورنس میں مورٹیلٹی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے لیے ایسس کرنے کو انڈر رائٹرز بیٹھے ہیں. وہ آپ کا یا میرا کام نہیں ہے. میرا اور آپ کا کام ہے کہ آپ کے کیس کو پراپرلی، ٹروتھفلی اینڈ سسٹمیٹکلی کمپنی کے آگے پیش کریں ہم، اور جب وہ لوگ اس کا جائزہ لیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نارملی اپروو ہو گئے یا آپ کو उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके अप्रूव किया है, तो आप उस समय बैठ के फिर से मीटिंग करके सोच सकते हैं कि आपके लिए प्लान कितना मुफीद साबित हो सकता है। खुद फैसला ना करें, अपना केस अपने एडवाइजर से डिस्कस करें या मुझसे डिस्कस करें 416-894-5872 और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने दें।
जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी से, प्रदीप जी का ताल्लुक सन लाइफ फाइनेंशियल से है। और प्रदीप जी, अब ये बताइए कि और क्या मेजर प्रायोरिटीज हो सकती हैं किसी के पास?
किसी के पास बहुत सारी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। लोगों के पास प्रायोरिटी होती है कि अगर मेरी डेथ हो जाए, है ना, तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं मेरी डेथ के बाद और मेरी वाइफ की डेथ के बाद मेरे बच्चों के पास जाए और ये उसको संभाल के रखें, ऐसा ना हो कि बच्चों को टैक्स देना पड़े, इस चक्कर में आनन फानन में बेच दें, तो उसके लिए भी प्लान्स बन सकते हैं। एक बड़ा शानदार प्लान है जो एस्टेट प्लानिंग को मद्देनजर रख के बनाया गया है। इसी तरह से किसी के पास, जो कि अब बहुत बड़ी तादाद हो गई है, ऐसे बच्चे हैं जो उन पर डिपेंडेंट हैं, स्पेशल नीड्स हैं, जब तक हस्बैंड वाइफ कोई एक है तब तक तो बच्चों की देखभाल होगी, उसके बाद भाई बहनों में से किसी को करना पड़ेगा या ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, तो वो प्लान भी हमारे पास है जिसमें कि काफी कम पैसों में आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कॉल कर लें 416-894-5872। और आपके पास अगर दूसरे प्रायोरिटीज हैं, आपके पास क्रिटिकल इलनेस की प्रायोरिटी है, आपके पास लॉन्ग टर्म केयर की है या आपको इन्वेस्टमेंट्स करने, यू कॉल, डिस्कस एंड देन डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं।
ऑफ कोर्स एवरीबॉडी जो भी अपने आपसे पॉलिसीज लेता है तो उसका इवेंचुअली क्लेम पे उसका नजर होती है कि क्लेम का
बिल्कुल
हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज टू गेट द क्लेम एंड उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होती है।
माजिद भाई, सन लाइफ में क्लेम लेना बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसी ये भी एक रीजन है कि मैं कंपनी में 25 साल से मुसलसल काम कर रहा हूं। किसी की डेथ होती है तो एकदम फैमिली में उसके हंगामा मच जाता है, एक अजीब तरह की इनसिक्योरिटी आ जाती है, और चाहे कोई आदमी रईस हो या सिर्फ खाता पीता हो या हैंड टू माउथ हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, गोरा हो, काला हो, सबके पास एक ही सवाल आता है कि भाई मेरे वालिद साहब ने या मेरे हस्बैंड ने कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लिया और कितनी जल्दी हमें पेमेंट मिल सकता है। तो ये जो चीज है इससे सब पे प्रेशर आता है, कंपनी पे भी, एडवाइजर्स पे भी, लेकिन चूंकि कंपनी बहुत स्पीड से क्लेम सेटल करती है इसलिए एडवाइजर को भी लोग अच्छा समझते हैं, कंपनी को भी अच्छा समझते हैं, रिपीट बिजनेस भी आता है। और पॉलिसी वाइज 5 साल से किसी की पॉलिसी चल रही है तो 5 बिजनेस डेज में सनलाइफ का कॉल है पैसे पे करने का। अगर 1.5 लाख तक की पॉलिसी है और 5 साल चल चुकी है तो हमें क्लेम भी नहीं बनाना पड़ता। कोविड टाइम में माजिद भाई सबको बहुत परेशानी आई, बहुत कंपनियों को, क्योंकि कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाता था। सन लाइफ बिकेम एक्स्ट्रा फास्ट, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में क्लेम पास किए उन्होंने, तो इससे क्लाइंट्स को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है एज एडवाइजर कि हम अपने काम को प्रॉपरली अंजाम दे पा रहे हैं। और वो क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर एप्लीकेशन भरी, सारे फैक्ट्स प्रॉपरली रखे तरतीब से, और क्लाइंट ने सारी डिटेल्स ऑनेस्टली बताए, और जब क्लेम आया सारे पेपर वर्क प्रॉपरली कंपनी के सामने सबमिट किए और कंपनी ने बड़ी स्पीड से डिसीजन दिया। तो ये चीजें हैं जो कि आदमी को बहुत फीलिंग ऑफ कंफर्ट देती है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देती है। और लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कनाडा में अगर हम बेनिफिशियरी को मुंतखब करते हैं, जैसे मेरी पॉलिसी, मेरी वाइफ मेरी बेनिफिशियरी है, टैक्स फ्री होता है, कम्प्लीटली 0 टैक्स, चाहे 5 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 100 लाख हो।
आखिर में कैसे रैप अप करेंगे सर आप उसको?
यही कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत तरह के ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आप खुद जज मत बन जाइए कि मैं इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता और मेरे मन में जो रीजन्स हैं, वो आपके मन में रीजन्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसको एक बार डिस्कस करें और कोई कॉस्ट नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, उसको सुने, सोचे और उसके बाद आप फैसला करें कि आपको कुछ छोटा मोटा या बड़ा या जो भी चीज आपके बजट में सबमिट फिट हो सकती है वो आपके लिए कितनी और आपकी फैमिली के लिए यूजफुल साबित होती है। अगर आपको लगता है यस, देन गो हैड। और अगर किसी रीजन से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको कंपनी अप्रूव नहीं करती, तो उसके में भी फिक्र नहीं है, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा मेडिकल्स का या डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स वगैरह का, वो सारा खर्चा सन लाइफ बर्दाश्त करेगी। तो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट कॉल 416-894-5872 माजिद भाई,
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। जैसे मैंने आपसे कहा सन लाइफ फाइनेंशियल से मुंसलिक है, हर ट्यूसडे को हमारे साथ यहाँ पर इस टाइम पे यहाँ पर होते हैं हमारे साथ प्रदीप जी। कोई भी क्वेश्चन हो आप प्रदीप जी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 416-894-5872। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका,
थैंक यू वेरी मच माइज,
बहुत शुक्रिया।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है 786 मूविंग प्लस।
अच्छा, वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए 416-786-6000।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ा आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड मिसिसागा।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे, भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे, बटाला सुपर मार्केट।
स्कॉर्पियो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड स्कारबोरो, मार्कम रोड से इंग्लैंडन का संगम, फोन 416-264-3111।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडीज और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन जीटीए। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
और बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जब तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। सहाफियों के बारे में कहा जाता है कि वो लिफाफे लिया करते हैं, मगर हमारा ऑफिस 770 लिफाफे लेता नहीं है, हम लिफाफे देने के कायल हैं। अभी पिछले दिनों एक फैमिली ने लॉयन सफारी की टिकट जीती। बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट हुआ करते हैं जो 7 बजे के बाद आप देख सकते हैं, यानी 6:45 के बाद न्यूज होंगी और 7:45 के बाद आप ये देख सका करेंगे। तो हमने भी, हमारे ऑफिस से भी एक लिफाफा दिया गया एक फैमिली। आपसे रिक्वेस्ट है, ये नंबर नोट कर लीजिए हमारे स्टूडियो का, 4166201778। बहुत सारे क्विज प्रोग्राम होते हैं जिसमें लोग विन करते हैं, और ये जो प्राइस था ये तो वर्थ अराउंड $200 का ये प्राइस था। लॉयन सफारी की एक टिकट विन की गई थी। एक हस्बैंड वाइफ आके इस टिकट को विन करके लेके गए। बेसिकली तो ये एक क्विज है और लोग लिफाफे लिया, सहाफी लिफाफे लेते हैं मगर 770 पे लिफाफे दिए जाते हैं। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट टू दिस फैमिली फॉर विनिंग टिकट फॉर लॉयन सफारी। मुझे अभी अभी पैगाम मिला है एयरविंग ट्रेवल का, सऊदी एयरलाइन। जैसा मैंने आपसे कहा कि एयरविंग ट्रेवल तमाम एयरलाइंस को डील करते हैं, कैनेडा के ऑल नेटवर्क जो कहते हैं, सऊदी एयरलाइन ग्लोबल 50% ऑफ मिल रहा है आपको। यस, सऊदी एयरलाइंस पे आपको 50% सीटें भी जरा खुली हैं, मजे की सीटें हैं। सेल्स पीरियड जो है इमीडिएट 31 अगस्त, आज क्या तारीख होगी, 20 तारीख होगी, 10 दिन में आपने अगर 50% ऑफ ऑन सऊदी एयरलाइन लेना है तो यू हैव टू कॉल एयरविंग ट्रेवल 1855। बिल्कुल जी, ये मेरे तक अभी पहुंच पे 1 सितंबर टिल 30 नवंबर तक आप ट्रेवल कर सकते हैं, वेरी गुड डील। टिकट्स आपने अगस्त में लेनी है, बट ट्रैवलिंग टाइम जो है वो सितंबर से 30 नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर तक ट्रैवलिंग टाइम है। टिकट मस्ट बी इश्यूड आफ्टर 18 अगस्त, 18 अगस्त के बाद। आज तो खैर 20 अगस्त है, आप ये एयर विंग ट्रेवल को कॉल करें 1855-247-9464। सऊदी एयरलाइन पे 50% ऑफ आपको मिल रहा है, सऊदी एयरलाइंस पे 50% ऑफ आपको मिल रहा है। टिकट कोई भी अगर आपने लेनी है, एयर विंग ट्रेवल, दे आर ऑथराइज्ड डीलर एयरविंग ट्रेवल, उनके तवसुत से। एक मुलाकात की तरफ लेकर के आपको बढ़ना है। आपको पता है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब आशर अजीम साहब शामिल हुआ करते हैं। यकीनन एक दो दिन पहले की खबरों को हम कवर करेंगे। बहुत सारी फेक न्यूज भी है। अगेन मैं एक कहानी जो मैंने कल के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करनी है, कभी कभी तो दिल करता है आज भी शेयर कर लूं, मगर नहीं, मैं आशर अजीम साहब का टाइम नहीं लेना चाहती। पाकिस्तान में इंटरनेट इंतहाई सुस्त है। आपको पता ही होगा कि जनाब हामिद बीर साहब इसको कोर्ट में लेके गए हैं केस में, और उसके बारे में बात हुई। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना का केस है, साबिक वजीर आजम के मिलिट्री सिक्योरिटी को सेक्रेटरी को भी गवाहान में पेश किया जाएगा, और ये वो सेक्रेटरी हैं जिनमें 22 गवाहों के नाम मंजर आम पर इस वक्त आए हैं, जिसमें साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद का नाम भी शामिल है। ये मोहम्मद अहमद वही हैं जिन्होंने डिप्टी मिलिट्री से 18 मई 2021 को सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने और तोहफा डिक्लेयर करने के बारे में आगाह जरूर किया था, लेकिन जूली सेट वहां जमा नहीं करवाया था। 50% देकर बल्गारी ज्वेलर सेट अपने पास रखा जा सकता था, और मजे की बात है ये बल्गारी ज्वेलर सेट जो ये बल्गारी कंपनी है वो भी इन्हीं में आ रहा है। 22 गवाहान के नाम आए हैं। फैज हमीद साहब को किया, मगर ये तमाम चीजों में आज पाकिस्तान से बयान भी आ गया है, यस अल्टीमेटली इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में लेके आया जा सकता है, और शायद ये तमाम चीजें उसी लिए बनाई हैं। आशर अजीम साहब, सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ शामिल हुए इस प्रोग्राम में, और मैं हमेशा इस प्रोग्राम की इब्तदा में ये बताना चाहती हूँ, आप जैसी काबिल कदर शख्सियत को शामिल करने का मकसद ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स, ये आला अफसरान आपके दोस्त भी रहे, आपके कोर्समेट्स भी रहे, आपने डिफरेंट कोर्सेज में भी इनसे मुलाकात की, और इंसान की शख्सियत का अंदाजा उससे मिलने के बाद हो जाया करता होता है। मैं सर पाकिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें दो चीजों को डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, हम एक ही बयानियां सुन सुन के तंग पड़ गए हैं, बहुत तंग आ गए हैं। 19 पहले एमक्यूएम को बनाया गया, फिर एमक्यूएम के बारे में लगाया गया कि ये तो जी रॉक एजेंट, यानी वी हैव नथिंग एल्स टू से अदर देन दिस। फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ भी बारहा ज्यादती हुई। फिर आपकी जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में भी यही बयानी आया था अगर आपको याद होगा कि इनकी फैक्ट्री में रमजान शुगर मिल में बेशुमार लोगों को इंडिया से हायर किया गया था। मैंने इस खबर को अपनी आंखों के साथ मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान के आला न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था। आज एग्जैक्टली वही बयानियां आ गया कि रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया जाता है, और फिर वही कि जी इनके तो दहशतगर्दी के लिए इंडिया के साथ ताल्लुकात थे। आज इसके तनाजर में मैं ये कहती हूं कि आज पाकिस्तान के अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान साहब ने एक बड़ी कमाल की बात कही है। उन्होंने ये लफ्ज कहा है कि ये सियासतदान अपने अंदर जमहूरियत को पनपने नहीं देते, वक्ती मफाद की खातिर, और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि ये सियासतदान वक्ती मफाद की खातिर बूट पॉलिश करते हैं, जब अपने ऊपर बुरा वक्त आए तो एस्टेब्लिशमेंट को गालियां भी देते हैं, और सर ये तारीख गवाह है कि हर एक ने गालियां दी थी, और फिर जब इनको इख्तदार की जरूरत होती है तो एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करके अपने लिए रास्ते तैयार करते हैं और इख्तदार में आने के लिए सौदेबाजी करते हैं। आज कल तक जरदारी साहब का भी पेट फाड़ा जा रहा था, नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कोई अच्छे ख्याल नहीं थे, आज इमरान खान उसी स्टेज पे हैं। आप इस पूरी की पूरी सूरत हाल को कैसे लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, और क्या उनको तसल्ली और तशफी देंगे कि ऐसा ही होता रहेगा या कहीं सच भी पनपेगा?
आरिफा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो yet again, and مجھے تو جو آپ نے جماعت اسلامی کے صاحب کی بات بتائی مجھے کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کس کے حوالے سے کہی، لیکن بات تو بڑی میننگ فل ہے کہ جی سیاستدان اپنی مرضی کے لیے پھر فوج کے کندھے پر آتے ہیں، اس کے بعد جو اگر ان کی نہ بنے فوج سے تو پھر فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یس دس ہیز بین دا فیکٹ بٹ آئی ڈونٹ نو دس ہیز بین یونیورسلی فار ایوری بڈی. دیکھیے میری اور پھر جب ہم یہ کہیں کہ جی یہ بیانیاں اب یہ ہے کہ جی کہ ہر ایک کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یقیناً یہ رہا ہے بیانیہ، پھر ہمیں لیکن شفاعت کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایسے ہی بات کرنے سے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی نا جی، فیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ میں دو تین لیٹس کائنڈ آف لک ایٹ دا بگر پکچر فرسٹ اینڈ دین لیٹس ٹرائی ٹو زوم ان ٹو تھنگس. اسپیسیفک پاکستان میں بڑا اس وقت ٹربیولنٹ ٹائم ہے، آپ یہ دیکھ رہی ہیں نا کہ جی چھ لوگ آج جیل سے گرفتار کیے گئے، مزید کہ جی وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے یا اچھا جی اس کا مطلب ہے کہ یہ بات آگے چل رہی ہے. سب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی باجوا صاحب کیوں ان کو نہیں بلایا جا رہا، وہ ڈنر میں بھی مسنگ تھے، تو اب نیکسٹ کیا ہوگا، کیا یہ وہاں تک معاملہ پھیلے گا، کیا یہ خان صاحب کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ پورا کام کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جی کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے لوگ پہنچے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی، وہ بیکری کا بھی آپ نے واقعہ ابھی سامنے آیا ہوگا کہ پیپل ریفیوز ٹو سرو قاضی صاحب. آپ نے دو چار دن پہلے، میں ذرا آپ کو جو پورے ملک میں ایک اوور آل ماحول ہے ذرا ہم یہاں سے شروع کریں، میں نے کیا کیوں کہا کہ زوم آؤٹ کر کے ذرا ہم دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. تو ایک آپ کو صورتحال آف اینارکی نظر آئے گی، اور 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 جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی مور سینسیشنل دین دا نیکسٹ پرسن. سو ایسی صورت میں اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو فیکٹس کو پیورلی سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے، رادر دین اس کنجیکچر کو آپ جتنا بڑھائیں گے تو آپ پھر نیشنل انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے. اب دیکھیے اگر آپ نے ملک کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو اس پہ تو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے، اور نہ برتی جائے گی، نہ برتی جانی چاہیے، نہ دنیا کے کسی ملک میں برتی جاتی ہے. آپ اگر برطانیہ کے آپ ریسنٹ اگزامپل لے لیں، وہاں پہ حالانکہ وہ نیشن سٹیٹ کے خلاف کام نہیں ہوا لیکن ملک کے اپنے اندر رائٹنگ ہوئی، تو آپ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ جی انہوں نے کس طرح ریپڈلی 400 بندے کو تو ابھی تک وہ سینٹنس کر چکے ہیں، اور اس میں 12 سال سے لے کے 71 سال تک کا بندہ شامل ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. وہ دنیا کے تمام ممالک میں پرسو کر رہے ہیں اس میٹر کو کہ جی آپ نے ہمارے اسٹیٹ کی، کیونکہ رٹس قائم رکھنا جو ہے جی یہ بڑی سلپری سلوپ ہے، اگر آپ کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور آپ اپنی رٹ قائم نہیں رکھ سکیں گے اور آپ ہر چیز کو معاف کر دیں گے اور ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیں گے یا صرف اس میں چیمے گوئیاں اور ادھر ادھر فیکٹس دیکھے بغیر، تو آپ صرف اپنے ملک کو ویکن کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. سو یو آر ہیڈنگ فار اینارکی. اور مجھے تو وہ جو خاتون تھی جو دن دہاڑے لاہور کے ایک پارک میں پھر رہی تھی یا پتہ نہیں جہاں بھی اسلام آباد کا پارک ہے، جس طرح اس پہ لوگ پڑھ رہے تھے، جس طرح جتھے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ آپ، ہم نے تو ایک عجیب سٹیٹ آف اینارکی پہ ملک پہنچا ہوا ہے. یہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہے، یہ کنٹینیوسلی ہماری ویکنیس کی وجہ سے ہے. ایوری بڈی تھنکس کہ جی ان کو پریشرائز کرو تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ جی آپ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں تمام اداروں کو ویکن کیا، اس میں فوج بہت بڑا خود فوج کا حصہ ہے. آپ نے چونکہ سیاستدانوں کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنا ٹینیور پورا کر سکوں گا کہ نہیں، کیونکہ جیسے ہی ایک بندہ الیکٹ ہوتا تھا تو پیچھے فوج بیٹھی اسے ڈیسٹیبلائز کرنے کے چکر میں ہوتی تھی، تو وہ بھی ہمیشہ بڑے ڈیفینسو رہے ہیں. جہاں عوام نے تھوڑی سی کوئی بات کی तो वो डर जाते हैं, वो फौरन रिलेंट कर देते हैं। ये जो ट्रेडिशन पाकिस्तान में इस तरह पीछे से चलता आ रहा है, जहां पे जिस शख्स ने जो भी उसने करने की कोशिश की तो हुकूमत हमेशा पीछे हट गई, इससे आज हम एक ऐसी वर्ज पे खड़े हैं जो मैं बहुत अरसे से कहना चाह रहा हूं कि भाई हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये मुल्क को आपने इसके रिट ऑफ रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स ना किया, रिट ऑफ द स्टेट को कायम न किया, तो आप एनार्की में चले जाएंगे। सो दिस इज द बिगर पिक्चर। ठीक है, नाउ कमिंग टू से इंडिविजुअल स्मॉल पीसेज ऑफ इट, से फैज हमीद साहब, और ये वाला सवाल के जी बाजवा साहब को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और क्या फैज हमीद साहब को सिर्फ इमरान खान के चक्कर में पकड़ा गया। देखिए, पहले तो हम फैज हमीद पे स्पेसिफिक चार्जेस जो हैं, जो फैक्ट्स नॉन फैक्ट्स हैं, उस पर तो हम बात करें ना, और फिर उसके बाद कंजेक्चर पे जाएंगे। पहले नॉन फैक्ट का तो पता होना चाहिए। जो उन पे पहला केस है वो टॉप सिटी का है। अब क्या वो टॉप सिटी में नहीं गए थे? क्या उस बंदे को उठा के तहखाने में नहीं ले जाया गया? क्या उससे 400 तोला सोना नहीं लिया गया? क्या ये जनरल बाजवा के ने उनको कहा था कि जी आप ये करें? क्या जनरल फैज हमीद ने हाईवे पे सड़क अपने गांव के लिए जनरल बाजवा के कहने पे बनाई थी? क्या अपने भाई को तहसीलदार से प्रमोट करवा के जहां भी वो लेके गए वो जनरल बाजवा ने उनको कहा था? ठीक है, अब अगर मैं अपना घर भरी जाऊं चीजों से, चोरियां डाके डाल रहा हूं, सोना चांदी एक्यूमुलेट कर रहा हूं, अपने अपना जागीरदार बनता जा रहा हूं, और आपने के ही पिछले प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि जी वहां का उस चकवाल में कोई जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आगे चीजों का इफ्तिताह नहीं कर सकते, जनरल बाजवा साहब जनरल फैज के भाई जाके इफ्तिताह कर सकते। तो ये चीजें क्या जनरल बाजवा के ऑर्डर पे हो रही थी? मैं यकीनन इस पे आता हूं कि जनरल बाजवा क्या कर रहे थे और फैज हमीद क्या कर रहे थे। देखिए, जनरल बाजवा की पॉलिसी पे, जैसे हम बाजवा डॉक्ट्राइन कहते हैं, वो तो पिछले 8-10 साल से चल रही थी ना, जनरल बाजवा के आने से पहले से चल रही थी। सारे जनरल और फौज एक पेज पे थी कि जी हमने पाकिस्तान को वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर के सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लेके जाना, और उसके लिए उन्होंने एक पूरी डॉक्ट्राइन थी, उसके लिए उन्होंने मीडिया को भी इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या नाम है सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रेन किया, उन्होंने एक पूरा जजेस को जुडिशरी को, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो जज साहब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जब जनरल फैज हमीद साहब उनके पास आए और उन्होंने कहा जी अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया जाएगी, वो तो 2 साल की मेहनत सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे। जो ये डॉक्ट्राइन बनी हुई थी ये तो पिछले 8-10 साल से बन रही थी, इसमें सारे मोहरे वो अपनी मर्जी से पिक कर रहे थे। जस्टिस साहब ने सिद्दीकी साहब ने बताया कि जी अपनी मर्जी के बेंचेस बनते थे, अपनी मर्जी के लोग अपॉइंट होते थे, अपनी मर्जी को उससे लोगों को प्रमोट किया जाता था, यही मीडिया में हो रहा है, यही जुडिशरी में हो रहा था। सो एक निजाम चल रहा था। अब उसमें सिर्फ जनरल बाजवा जनरल फैज को नहीं कह रहे थे, उसमें जनरल आसिफ कफूर भी थे, उसमें शायद उससे पिछले जनरल आसिम बाजवा साहब भी हों क्योंकि वो भी ISPR के DG रहे थे, उसमें हो सकता है बाकी सारे कोर कमांडर भी शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया है जनरल फैज हमीद को। तो वो स्पेसिफिक चार्जेस, तो वो चार्ज ये तो नहीं है कि जनरल बाजवा के कहने पर अगर आपने कोई काम किया, सियासत में हिस्सा डाला, तो उसमें तो बाकी भी बहुत सारे लोग थे, उनपे भी आपको पकड़ लेते। अच्छा, आप सो वो स्पेसिफिक चार्ज है, क्या वो चीजें नहीं हुई? सो पहले तो, लेकिन असल में जनरल फैज को अपना घर भरने पर भी नहीं पकड़ा गया, वो भी बहुत से जर्नलों ने भरा होगा। उनको पकड़ा गया है, थोड़ा सा मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन आपको फौज का थोड़ा सी एक चीज समझने की जरूरत होगी पड़ेगी। वो ये है कि जी व्हाट इज द आर्मी? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ मेन हु आर ऑर्गेनाइज्ड टू ऑब्टेन देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू वायलेंस। ये मतलब ये फौज सारी दुनिया में फौज का यही कॉन्सेप्ट है ना. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ मैन एंड दे हैव दैट सेंस ऑफ अ ग्रुप कि जी हम एक ग्रुप हैं, उनमें वो ऑर्गेनाइज है एंड इट्स एन ऑर्गेनाइज ग्रुप जो अब वायलेंस से अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करता है. ये फौज की डेफिनेशन होती है. अब ये ग्रुप अपनी आइडेंटिटी अपने ग्रुप के लिए बड़ा पर्टिकुलर होता है. अगर बाजवा डॉक्ट्राइन थी, पॉलिटिक्स में हिस्सा डालते थे ये, और ये तो ये डालते आ रहे हैं थ्रू आउट, जनरल अयूब, जनरल मुशर्रफ, जनरल याया, जनरल ज़ियाउल हक, तो जो फैज हमीद साहब है उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से पे किसी ने नहीं पकड़ा. फौज में हर चीज माफ कर दी जाती है. आपने सोना कमाया, चांदी कमाई, जब तक आप उस ग्रुप के साथ हैं तो वो ग्रुप आपकी हर चीज प्रोटेक्ट करता है. फौज में एक चीज माफ नहीं की जाएगी, जब आप ग्रुप के खिलाफ हो जाएं, ठीक है जी, और फिर आप ग्रुप के अंदर होते हुए ग्रुप के खिलाफ हो, और फिर उससे अगली बात जो कि ट्रेचरी है कि आप बाहर जाके और लोगों को मिला के अपने ग्रुप में हमला कर दें. अच्छा, जनरल फैज को बेसिकली जो दो चार्जेस हैं, वो एक को अपना घर भरने के और वो ओवरलुक हो जाना था, अगर वो दूसरा काम ना करते जिसको पोस्ट रिटायरमेंट उन्हें ये कहा जा रहा है, अक्यूज किया जा रहा है कि आपने फौजी तनसीबात पे हमला करवाने में आप शामिल थे. ठीक है, एक दिन आया था ना कि जो मैंने आपसे पूछा जनरल आसिफ कफूर पे क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ, वो भी तो बाजवा डॉक्ट्राइन में उतने ही हिस्सेदार थे. वो इसलिए कि जब ग्रुप ने अपना जहन चेंज कर लिया, एक टाइम आया ग्रुप ने कहा कि जी ठीक है हम इस तरफ जा रहे थे, अब हमें नहीं लग रहा, हम इस तरफ नहीं कंटिन्यू करना चाहते, हम अलग हो गए, ये अब हमारी पॉलिसी नहीं है. अब या तो आप ग्रुप के साथ चलते हैं, जैसे जो जनरल आसिफ कफूर ने पॉसिबली किया, वो ठीक है जी, उन्होंने कहा जी सर नीचे किया, दूसरी तरफ से ले गया जाके अपना काम करना शुरू कर दिया. आपने ग्रुप के अगेंस्ट रेबल नहीं किया, और आपने ग्रुप के सिर्फ रेबल नहीं किया, उस पर अटैक नहीं किया. समहाउ जनरल फैज ने केस को जो पकड़ा भी गया और जो एविडेंसेस भी वो लेके आ रहे हैं, और उसको भी हमें देखना पड़ेगा क्या 9 मई को, अब इसमें अभी फिलहाल हम नहीं जाते कि किसने किया, लेकिन क्या 9 मई को मियांवाली एयरबेस पे लोग नहीं पहुंचे हुए थे, मतलब हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, क्या जीएचक्यू पे लोग नहीं पहुंचे हुए थे, आपने भी अपनी आंखों से देखा है, वो जिस तरह डंडे मार रहे हैं लड़के और उन्होंने वो बुत उठाए हुए और चीजें तोड़ रहे हैं, और क्या कोर कमांडर लाहौर के घर पे लोग नहीं पहुंचे हुए थे. सो इशू ये है कि और फौज ने खुद कहा कि ये जिस तरह की टारगेटिंग की हुई थी, 103 मुल्क में टारगेट आइडेंटिफाई हुए, उस पर जो लोग पहुंचे तो पीछे से जाहिर है कोई कोऑर्डिनेट कर रहा था. तो जनरल फैज पे दो बेसिकली एक्विजिशंस हैं, एक टॉप सिटी वाला इशू कि आपने अपना घर भरा, और दूसरी एक्विजिशन यह है कि जी आपने बेसिकली ट्रेचरी,
आप अपने ग्रुप के अगेंस्ट गए, आप अपने
ग्रुप ट्रीजन किया, ठीक है जी, आप दुश्मन के साथ मिलकर आपने अपने ऊपर हमला किया. ये फौजें नहीं छोड़ती. मैंने आपको इंग्लैंड की मिसाल दी कि जी वहां पे सिर्फ रिट ऑफ द स्टेट राइटिंग करके उन्होंने ये किया, तो इंग्लैंड किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं वो सर, आपके सामने है.
सर मुझे तो एक सवाल करने की इजाजत दें,
इंग्लैंड के एयर बेसिस पे हमले होते हैं,
मुझे
इंग्लैंड के कंटोनमेंट पे हमले होते तो आपके ख्याल में क्या होता? तो
बहुत बुरा होता. आप अमेरिका में करके देख लें, कनाडा में करके देख लें, देखिए उसके क्या कॉन्सिक्वेंस. मगर सर मुझे आप यहाँ एक सवाल करने की इजाजत दें. पहली बात सारी की सारी मुझे जो आपकी गुफ्तगू से लगी कि दिमाग मत लड़ाओ, अपना दिमाग मत लड़ाओ, मतलब दिमाग खाली रखो, ऑर्डर मानो. एंड इन माय कंट्री इट्स नॉट समथिंग आरिफा इज सेइंग, इट्स बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान की फौज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फौज है, हमारी आईएसए इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इदारा है. ऑल दो चीफ ऑफ आईएसआई जो डीजीआईएसआई है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं, मगर फौज इटसेल्फ इज एन इदारा के डीजीआईएसआई कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस ही कीप्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोस्टेड फॉर एवरीथिंग. ठीक, तो इसका मकसद है जितनी आपने गुफ्तगू की कि जनरल फैज को फेंटी इसलिए लगेगी बिकॉज उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को Do you think he did not keep him posted? क्योंकि वहाद मुल्क है पाकिस्तान, उसमें प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं या बैठे होते हैं तो पीछे आपको एक फौजी खड़ा नजर आता है फाइल जेब में रख के. तो वॉज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नॉट अवेयर ऑफ वॉट एवर वॉज हैपनिंग?
ही वॉज अवेयर, एंड इसीलिए जनरल फैज को उस किसी चीज पे चार्ज नहीं किया गया, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने पे चार्ज नहीं किया गया, जजेस और जुडिशरी के बेंचेस बनाने पे अभी तक कोई चार्ज नहीं उन्हें किया गया. उन्हें चार्ज किया गया एक तो टॉप सिटी पे, एंड आई डोंट बिलीव के जी वो जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि भाई एक बंदे को उठा के ले जाओ, उसे जमीने कब्जा कर ले. ठीक है ना जी, जहां पे आप बहुत से काम जनरल बाजवा के कहने पे कर रहे थे वहां पे आप बहुत से काम फिर शायद अपने लिए आपका एम्बिशन भी आ जाता ना, आप उस पर भी कर रहे होते.
ये वो बात
ना कि आपने शायद एक लतीफा साहब वो कहते हैं कि जी एक खातून ने एक साहब से पूछा कि आप मुझसे शादी करोगे, उन्होंने कहा नहीं यार वो तो मैं अब्बा से पूछूंगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा अफेयर चलाते हुए आपने अब्बा से पूछा था. सो बहुत सी चीजें जो है ना जी वो आप जिस चीज पे उनको चार्ज किया जा रहा है वो चीज उन्होंने जनरल बाजवा से नहीं पूछी थी, उस पर तो जनरल बाजवा वाली बातों पर तो उन्होंने चार्ज भी नहीं किया जा.
ठीक है, ठीक.
और दूसरा जो मेजर चार्ज है
वो नाइन्थ मे का है,
वो नाइन्थ मे का है कि यार यू वर एडिंग एंड अबेटिंग एन एनिमी, सो ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली हैपेंड ऑन ग्राउंड राइट एंड समबडी वाज कोऑर्डिनेटिंग इट.
सर मेरा अब यहाँ आपसे एक सवाल आता है, हर मामला करने के बाद उसका कोई बेनिफिट, देयर इज अ बेनिफिशियरी फॉर एवरीथिंग. नाइन्थ मे के हवाले से सर, मैं पाकिस्तान में मैंने जिंदगी गुजारी, आपने अफसराना जिंदगी गुजारी और आप यकीनन उन गवर्नमेंट हाउसेज में जाके ठहरे भी हैं. मैं डिफेंस के बारे में जितना जानती हूं या किसी भी कोर कमांडर हाउस के बारे में, सीसीटीवी कैमराज परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में लगे थे, हर चौक में लगे हुए हैं. व्हाट हैपेंड? नंबर वन, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ नाइन्थ मे? नंबर वन. एंड नंबर टू, Where was the security that day? I doubt it very much ke PTI is beneficiary. Aaj Rauf Hasan ko arrest karne ke baad, unke phone se data nikalne ke baad, agar ye kaha ja raha hai ke inke talukat RAW ke saath the, to what would you say about that?
Dekhiye, pehli to aapke do parts hain na sawal ke. तो पहली बात यह है कि जी कोर कमांडर उस दिन सिक्योरिटी कहां थी, सीसीटीवी कैमरास कहां थे. तो इसीलिए तो जो लाहौर का कोर कमांडर था ही वॉज टेकन टू टास्क एंड आई बिलीव ही वॉज फायर्ड. ठीक है जी, उनके साथ इस एक्सटेंट तक नहीं गए कि जिस एक्सटेंट तक जनरल फैज के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज ने तो न सिर्फ ये कि जब DGISI से कोर कमांडर पेशावर बने तो चले, आप कहते अच्छा यार अब ग्रुप की दूसरी तरफ मूड है तो मैं ग्रुप के साथ चलूं, आप न सिर्फ वहां पर नहीं चलना शुरू हुए, आप डिस्टेंट होते गए. फिर जब आप रिटायर भी हो गए तो आप कहते हैं अच्छा यार ठीक है मैं रिटायर हो गया, तो अब आप एक डायरेक्शन में चले गए. तो वो तो सिंपल रिबिलियन है या ट्रीजन है जैसे वो समझ रहे हैं. और वो सो जो आपका सवाल है कि जी चूंकि कोर कमांडर लाहौर उस वक्त मिले हुए थे इसीलिए तो कोर कमांडर लाहौर को ट्राई किया गया. तो वो सो ये तो बिल्कुल सीधी सी ये बात है. दूसरा आपका सवाल कि जी रऊफ हसन साहब से, देखिए रऊफ हसन साहब के बारे में जब तक आज तक ये चीजें नहीं आई थी तो आई वाज एक्चुअली क्वाइट सिंपथेटिक एंड आई थॉट कि यार ये क्या एक शायर आदमी है, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं.
वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, आई हैड चांस टॉकिंग टू हिम सो मेनी टाइम्स. ऑनेस्ट टू गॉड वो आदमी बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है.
बिल्कुल, एंड एज आई सेड के जी मेरा हमेशा से ये ख्याल था कि यार ये क्या मतलब आप इस तरह की बातें, ये एक आदमी को हक है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे. आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. आप देखिए फौज के साथ सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान जिसने एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये किस तरह लोगों को कंट्रोल करती है क्या, और हालांकि तो मैं फौज के बारे में सबसे पहले मैंने बोलना और क्लैरिटी से बोलना जो एक्सप्लेन करना मैंने शुरू किया. ठीक है जी, तो आई ऑलवेज थॉट कि जी मैं डिफर तो कर सकता हूं ना जी, मेरा एक डिफरेंस. आपको सियासत में नहीं हिस्सा लेना चाहिए. आपका काम गवर्न करना रूल करना नहीं है, ये सिविलियंस को आवाम को अपना बंदा इलेक्ट करने दें और आगे चलाने दें। अच्छा तो राउत साहब के बारे में मेरा एग्जैक्टली ये ख्याल था कि यार एक आदमी है, शायर आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, उसका आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विच इज फाइन राइट। मैं कभी ये एडवोकेट नहीं मैंने किया कि यार कंटोनमेंट पे चढ़ चढ़ दौड़ो, इसको आग लगा दो, फौज पे हमला कर दो, फलाना कर दो, क्योंकि वो अगर आप कर रहे होंगे तो आप पाकिस्तान को डैमेज करेंगे। सो लेकिन जो राउत साहब के अब जो मैं मैसेजेस देख रहा हूं, या तो हम कहें कि जी ये मैसेजेस गलत हैं, ये तो फैक्ट है कि राउत साहब वो ठाकुर के कौन है और उसके आपने कभी प्रोग्राम्स देखे हैं तो वो उसके साथ बातें भी कर रहे थे ठीक है जी। वो जो अंग्रेज है वो रायन जो भी है उसको किसी ने गुड़ दिया कि तुझे पाकिस्तान की बड़ी दर्द है, मतलब पाकिस्तानियों से ज्यादा उसकी दर्द है। तो आप लोगों के साथ बहरहाल इन टच तो थे। अच्छा ये कांग्रेस ने, अमरीका की कांग्रेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया जो कि बड़ा सेलिब्रेट हुआ। IMF को खत लिखा गया कि जी आप मुल्क को लोन ना दें या जो भी अपनी ट्रांश ना बढ़ाएं। देखिए अरफा जी ये बातें, मतलब मैंने कहा ना जी मैं फौज के पॉलिटिकल रोल के खिलाफ सबसे पहला शख्स था जिसने बिल्कुल क्लियरली बोलना शुरू किया और उसे डॉक्यूमेंट किया, एक एक चीज लोगों को एक्सप्लेन की, दर्जना प्रोग्राम्स किए। और मेरा हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं पॉलिटिशियन हूं, ना मैंने इलेक्ट होना है, ना मैंने कुछ होना है, ना मैंने शायद उस मुल्क में वापस जाना है। तो मैंने अपनी जितनी अच्छी रिलेशनशिप थी फौज के साथ वो सारी सैक्रिफाइस कर दी।
आपने तो अपनी जमीनें भी डुबो दी।
जी सब कुछ डुबो दिया इसलिए कि भाई खुदा के लिए मुल्क को आगे चलने दो। सारे भाई आपस में मिलके बैठ के हमने ये इस मुल्क को आगे लेके चलना। अब लेकिन मैं ये कभी नहीं कहा कि यार मैं जाके किसी अमरीकी से मिल जाऊंगा, मैं किसी इंडियन को बुला के लाऊंगा, मैं किसी मुल्क से रेजोल्यूशन पास कराऊंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ना चले तो पाकिस्तान का ये ना हो। देखिए ये मेरी समझ में नहीं आता। आप जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं अगर आप इस लेवल पे पहुंच रहे हैं, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि यार आप कहें अच्छा भाई खुश रहो, मैं तो जो कह सकता था, मैं जो अपनी 2 सेंट्स दे सकता था, मैंने अपनी जमीन लुटा दी, मैंने अपने पैसे लुटा दिए, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया, मेरी जुबान पे भी कोई नहीं सुनता, चलो ना सुनो, लेकिन मैं पाकिस्तान पे हमला कभी नहीं करूं, मैं किसी दूसरे के साथ एड एंड बेट नहीं करूंगा।
बहुत शुक्रिया। आप क्या महसूस करते हैं अमीर जमात इस्लामी साहब ने, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में फरमाया कि आपको नहीं पता कि उन्होंने कहा, ये उन्होंने इज्तमाई जो नाजमीन का जमात इस्लामी का इज्तवा था ना, ये सारी बातें उसमें उन्होंने कही जिसमें उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को उनके खाने में रहना चाहिए, जुडिशरी को उनके खाने में रहना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने वहां की। आप क्या महसूस करते हैं कि कल तक जो इट्स अ हाइब्रिड सिस्टम एट द मोमेंट इन कंट्री, PDM-1 आया, इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है, और यस मेरा कंसर्न है कि अब बारिशें शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान में, तूफान बाद बारां का मौसम होगा, गरीब आदमी मजीद पिसता चला जाएगा। आप क्या महसूस करते हैं कि कल तक ये जो एक दूसरे के दस्तो गिरेबान थे, कोई किसी के पेट को फाड़ रहा था और कोई किसी की नंगी तस्वीरें जहाजों में से गिरा रहा था, आज अगर ये सारे इकट्ठे हो बैठे हैं तो डू यू थिंक के दे आर पेड फॉर दिस सम काइंड ऑफ पोजीशन और मर्तबा, या ये मुल्क की मोहब्बत में ये सब इकट्ठे हैं और दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ एडवांटेज और रिलीफ टू द ऑर्डिनरी पीपल?
ओके सो पहली तो बात ये कि जी नंगी तस्वीरें फेंक रहे थे वो, आप बेनजीर भुट्टो साहब के वाक्य की बात कर रही हैं, आपको भी पता होगा, मुझे बहरहाल अच्छी तरह पता है कि वो मुस्लिम लीग नून वाले नहीं फेंक रहे थे, वो फौज थी पीछे, उस वक्त वो हमेशा बुरे तरीन प्रोपेगेंडा करते
थे। तो आप, मैं कहानी सुनाऊंगी आपके प्रोग्राम के आखिर में।
ठीक है। सो इशू ये है कि जी हमें क्या क्या बताया जाता है और क्या असल हकीकत क्या होती है। मैं जिस पर्सपेक्टिव से इसे देखता हूं, मैं इस पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि पाकिस्तान में एक 2-पार्टी सिस्टम चल रहा है बड़े अरसे, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं लेकिन 2 मेजर पार्टीज, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मतलब कम से कम 1988 से जब जनरल ज़िया गए तो उसके बाद से तो कम ये चल रहा। वो पार्टियों फौज बीच में ज़ाहिर है जीतती इस तरह थी क्योंकि वो एक फोर्स होती थी, वो इन दोनों को लड़ाती रहती थी,
डिवाइड एंड रूल।
हाँ जी, ये आपस में लड़ने में बड़े जबरदस्त होते थे, तो बस वो एक दूसरे के खिलाफ उनको इस्तेमाल करते थे। एंड यू नो द रियल विनर वॉज ऑलवेज पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, अब उनको कंधा मिल जाता था किसी का, दूसरे पार्टी का। अच्छा, हुआ ये है कि अल्टीमेटली मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है जब वो साइकिल थोड़ी देर चलता रहे तो, हालांकि वो किसी को टाइम कंप्लीट नहीं करने देते। जब पहली दफा पीपल्स पार्टी ने अपना टाइम मुकम्मल किया और मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन में बैठ के मेच्योरिटी दिखाई और उसके 5 साल कंप्लीट कर रहे, तो आप ये देखिए मिसाक जमहूरियत टाइप चीजें आनी शुरू हुई, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी शुरू हुई, और फिर अगली जो वो थी वो क्या उसे बोलते हैं, सूबों को उनके अख्तियारात मिलने शुरू हुए। सो उन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम अपने इख्तलाफात एक 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 जगह तक रखेंगे, जैसे बाकी मुल्कों में भी तो है ना जी, अमरीका में डेमोक्रेट्स भी हैं और कंजर्वेटिव भी हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, लेकिन देखें कैनेडा में भी है, लेकिन एक एक अपना कंधा उसमें तीसरे आदमी को नहीं। अब हुआ ये कि जी फौज को एक जगह पे आके समझ आ गई कि भाई ये तो वो मैंने आपको पुराने एक वाक्य सुनाया ना कि मैं एक दफा बैठा था टीवी पे देख रहा था, एक हाफिज साहब थे सेनेटर थे बलूचिस्तान से, तो उनको किसी ने पूछा इंटरव्यूअर ने जनरल मुशर्रफ का दौर था कि जी पाकिस्तान में जी जमहूरियत तो गड़े नहीं पकड़ती। उसने कहा जी क्योंकि आपने एक फौजी माली रखा हुआ, वो हर रोज पौधे को उखाड़ता है, कहता वो इसने जड़ नहीं पकड़ी और वापस लगा देता, कहते यार उसको चलने दोगे तो जड़ पकड़ेगा ना, उसको रोज उखाड़ोगे तो जड़ नहीं पकड़ेगा। सो आप रोज हुकूमतों को इसी तरह तब्दील कर देते। फॉर द फर्स्ट टाइम पीपीपी ने एक अपना 5 साल मुकम्मल किए, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, वो अभी चल रही थी तो फिर आपने देखा ये बीच में धरने शरने, और ये अब कोई इसमें सीक्रेट नहीं रह गया हुआ कि जी वो धरने पीछे कौन करवा रहा था, फौज के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, बाजवा साहब की एक डॉक्ट्राइन थी, असल में वो बाजवा साहब की नहीं थी, पीछे से चलती आ रही थी कि हमने मुल्क को एक सदारती निजाम में लेके जाना है और ये दो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमें पसंद नहीं। उसके लिए आपने हर किस्म की मनूवरिंग की, जज सेटअप किए, मीडिया सेटअप किया, सोशल मीडिया सेटअप किया, आपने जो आप कर सकते थे आपने। फिर आपने अचानक आपको ख्याल आया कि यार ओके अब हमें शायद ये वारे में नहीं आपको रह रहा था, तो आपने कहा जी हम पीछे हट रहे हैं। अब उसमें से आपके कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, वो आगे चल पड़े क्योंकि ऐसे कभी होता, अब आप उनको सॉर्ट आउट कर रहे हो। आपने सियासत से अभी भी तौबा नहीं की, आप स्ट्रक्चर अभी भी ठीक कर इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है जी, अल्लाह करे कि आप को ये तौफीक मिले कि आप आगे चले। बहरहाल की बात, आपका सवाल एग्जैक्टली क्या था वो इस लंबी,
हाँ आपने सर जी सर आप बात कीजिए।
सो इश्यू बेसिकली वही है कि जो थर्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट है, जो आप कह रही हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, ऑफकोर्स लड़ते।
ठीक सर आपने सर अभी कहा, मुझे आपकी बात एक बड़ी अच्छी समझ आई कि सदारती निजाम की तरफ जाना चाह रहे। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड इसका क्रेडिट जरदारी साहब को जाता है, ही टुक द पोजीशन जो इस वक्त फ्रांस के सदर मैक्रों ने किया है, जरदारी साहब ने उस टेन्योर को मुकम्मल करने के लिए ताकि पीपल्स पार्टी की स्टैम्प रहे, ही बिकेम द प्रेजिडेंट। और उस टेन्योर में 4 साल में आपके 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, राजा परवेज अशरफ और उसके बाद गिलानी साहब, अगर आप याद करें तो मतलब ये तो जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि ही टुक अ बेटर पोजीशन वेयर प्रेसिडेंट को ये हिला नहीं सके थे। दैट्स व्हाट इट इज। क्या नजर आता है कि जो बॉडी लैंग्वेज, आपने एक तस्वीर आई है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, क्या ये लोगों के दिमागों को मैन्युपुलेट करके, अगेन ये रिलीजन की बात करके, कुरान की बात करके, आयतों की बात करके, ये वो जियाउल हक साहब वाला दौर आने जा रहा है कि ओपनली डंडा लेके रूल करेंगे। और आपको पता ही है कि जनाब आसिफ मुनीर साहब और फैज हमीद का थोड़ा गड़बड़ भी हो गई थी, क्योंकि ही वॉज दी DGISI, तो इमरान खान साहब ने उनको हटा के फैज हमीद को ले आए थे। तो बस आप जस्ट टेल अस के व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान।
لیکن میں نے جیسے کہا کہ جی دا بگر پکچر از اینارکی مسٹ بی اوائڈیڈ ایٹ آل کاسٹس.
صحیح.
اینڈ رائٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ رول آف لا اور اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے.
ڈو یو تھنک دے آر دیٹ سینسیبل؟
ہو از دیٹ سینسیٹیو؟
سینسیبل. دے آر دیٹ سینسیبل کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ واٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دا اسٹیٹ.
I hope so. I mean, for the first time in this country, a DG Inter Services Intelligence has been arrested. اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس ان معاملات میں انوالو نہیں تھا تو پھر تو میں چلیں آپ کی بات مان جاؤں گا کہ یہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے. لیکن وہ ان معاملات میں بہرحال انوالو تو تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا جو دو اس پہ چارجز ہیں وہ دو چارجز تو بالکل کلیئر ہے نا. ہوا آپ نے بھی دیکھ رہی ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, پورے ملک بھی دیکھ رہا ہے, ویڈیوز بھی ہیں. اب یہ کہنا کہ بے نظیر پہ بھی غداری کا الزام لگا تھا تو میاں نواز شریف پہ بھی لگا تھا کہ جی تیری مل میں اتنے لوگ فرض کرو فلانے ہیں, لیکن یہ چارجز ان کے ویڈیوز تو آپ نے اپنے سامنے دیکھے ہیں. جی آگیں لگی دیکھی ہیں, ابھی ڈنڈے مارتے ہوئے دیکھے ہیں.
سر آخری کوشچن ہے, پاکستان میں اگر ہمارے جو میڈلز دیے جاتے ہیں ان کی افادیت رہنا چاہیے, فوج میں ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز وغیرہ دیا جاتا ہے, پاکستان میں اومنی گروپ کے جناب مجید صاحب کو ہلال امتیاز دیا گیا اور عمر فاروق کو ہلال امتیاز دیا گیا بیکاز انہوں نے ایکسپوز کیا تھا توشہ خانہ کو, ڈو یو تھنک اٹ از رائٹ؟
ایبسولوٹلی ریڈیکولس ہے جی, یہ بالکل غلط ہے. بٹ انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک وہ دیتا ہوں, ہوا یہ کہ جب میں پیکس کا پروجیکٹ بنا رہا تھا تو ہم ستارہ امتیاز کے لیے نامنیٹ, میں میرے ساتھ ایک دو میری ٹیم کے لوگ تھے. اچھا جی ہمیں ذرا پیکس کا پروجیکٹ پاپولر تو نہیں تھا اور اگر ہمیں ستارہ امتیاز مل جاتا تو آپ سوچتی ہیں کہ وہ پروجیکٹ کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. بیسیکلی جب ہم نے کون سا ستارہ ماتھے پہ سجا کے کرنا تھا. اچھا وہ مجھے اندر سے تکلیف بھی ہوئی, دکھ بھی ہوا, میں نے کہا یار چلو. اچھا آپ یقین کیجئے جب وہ ستارے امتیاز اس سال کے بھی میں نے دیکھے, اور کسی وقت یہ ایکسپیریمنٹ کیجئے گا ذرا, ہر سال
ہیروئنوں کو دیے جاتے ہیں, ستاروں کو دیے جاتے ہیں, وکرکاساؤں کو دیے جاتے ہیں,
آپ جن کو دیکھیں گی تو میں نے پتہ, میں ایکچوئل آنےسٹ ٹو گاڈ میں خوش ہوا, میں نے کہا یار شکر ہے آشر صاحب آپ اس لائن میں نہیں ہیں, یو نو. تو یہ ایبسلوٹلی غلط اوارڈز تھے ہمیشہ کی طرح. ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا اپنے ساتھ, کسی چیز کی ڈگنیٹی نہیں چھوڑی.
ہمارے شہداء کو یہ ستارہ جرت, ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے, اور یقیناً اٹس ویری سیڈ کہ اگر ستارہ امتیاز کو پولیٹیسائز کر دیا جائے گا تو دس
از. اصل میں یہ تو تھوڑی سی کریکشن میں کرتا ہوں, ستارہ امتیاز تو بیسیکلی سول ہے جو یہ دیے گئے ہیں, وہ جو فوجیوں ہوتے ہیں وہ ستارہ جرت,
ستارہ جرت وغیرہ جو دیے جاتے ہیں. مگر سر وہ پھر ہر چیز کی دیکھیے ہائبریڈ گورنمنٹ ہے, آپ یہ سویلینز کے لیے اگر آپ نے یہ کیا ان کے لیے وہ کیا تو سر مطلب اٹ لوز اٹس میننگ نا, اٹ ڈزنٹ ہیو دیٹ اسٹرانگ میننگ جو کسی چیز کو ارن کرنے کے لیے جس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ناؤ دا ایفرٹ از ٹو لک سم ونز جوتے اور یو کین گیٹ اٹ.
بالکل ایسے ہی ہے اور یہ بہت سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. میں دیکھیے اگر کاش ہمیں وہ عقل ہو کہ ابھی بھی ہم جس جنکچر پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو کہا نا مطلب وہ لاہور والا اس لڑکی والا ایشو تو دیکھ کے میں پریشان ہو گیا کہ یار مطلب آپ سوچنا کہ ایک عورت دن دہاڑے ایک میجر شہر میں پھر رہی ہے, اور وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بن مانس نہیں کسی مطلب ایک ہارر فلموں میں جو آپ دیکھ رہے ہو. یار ہماری یہ سٹیٹ آ گئی ہے. آپ نے وہ دیکھا تھا وہ جو سوات میں واقعہ ہوا تھا جس طرح اس بندے کو جلایا گیا تھا,
آپ نے سوات میں جلایا گیا تھا آپ یاد کریں. مگر سر یہ ٹیکنگ اس ٹو ا ویری رانگ سائڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی بھی عزت اور کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں رہے گی. इन द हैंड ऑफ मॉब्स बिकॉज पीपल डोंट हैव फूड. और आपको पता है कि अगर जानवरों को भी खाना पीना उनका महाल हो जाए तो फिर वैश्यों की तरह टूट पड़ते हैं.
आरपा जी, जो इकोनॉमी है ना, हम शायद बड़ा इंटेलेक्चुअली झूठ बोलते हैं. जो हम हमेशा कहते हैं यार इकोनॉमी ठीक कर लो बाकी सारा ठीक है. यार जब आपने पीछे स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक करेंगे तो अल्लाह बदनीयत लोगों को पैसा क्यों दे. मतलब आपके जी सड़ा बाकी कुछ ना हो हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए. यार कैसे आपकी इकोनॉमी ठीक होगी? आपकी एनर्जी की आपकी पॉलिसी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी नहीं है, लेबर की पॉलिसी नहीं है, इखलाकियात ही नहीं है, तो फिर आपको पैसा किस चीज का?